दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज बुध है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकते हैं नगमा सहर और अदब खजाना। दोस्तों, ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की ज़ेर निगरानी तैयार किए गए हैं, तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 12वां बाब 24 से 26 आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीफ करे, और जहाँ मैं हूँ वही मेरा खातिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, शहीदों का लहू क्लीसिया का बीज होता है। शहीदों ही की कुर्बानियों से क्लीसिया अपने शबाब को पहुंचती है। आज क्लीसिया मुकद्दस लॉरेंस शहीद की ईद मनाती है, जो क्लीसिया का शहीद है। आज के कलाम में हमने सुना कि बस मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। किसान गंदुम काश्त करता है तो खेत में चंद किलो गंदुम का बीज बखेरता है। गंदुम का बीज सुहागे के जरिए दफन हो जाता है। बीज उगता है तो बहुत बड़ी फसल तैयार होती है। आज के कलाम का मफहूम यही है कि फना में बका है। यीशु ने अपनी कुर्बानी दी तो पूरी कायनात को निजात मिली। यीशु की शहादत बेहतरीन है, इससे जिंदगी के सोते फूटते हैं। यीशु के लहू से निजात आई। मसीह यीशु की पैरवी करते हुए ही मुकद्दस लॉरेंस ने अपनी क्लीसिया के लिए अपनी जान दी। मुकद्दस लॉरेंस का आज यौम यादगार है। मुकद्दस लॉरेंस 34वीं सदी का शहीद है। उसे वॉल्टन हाकिम के दौर में ही शहीद किया गया। मुकद्दस लॉरेंस के साथ 4 और डीकन भी थे। ये मुकद्दस पोप क्रिस्टस डोम का अहद था। इसे वेरानो के कंपसी बरास्ता तरबीतीना में दफनाया गया, जहां पर कॉन्स्टेंटाइन आसम ने एक बाल फ्ली का बड़ा गिरजा तामीर करवाया। मुकद्दस लॉरेंस के इस अजीम चर्च की जियारत और इबादत जायरीन में आज तक जारी है। खुदा खुशी से देने वालों को प्यार करता है, और इन मसीहियों और शहीदों ने खुशी से अपनी जानों का नसराना खुदा बाप की नसर किया। दुआ करें कि खुदावन हमें भी ये तौफीक अता फरमा, ताकि हम हर मुश्किल हर मुसीबत में साबित कदम रहें और वक्त आने पर अपनी जान का नसराना तेरे लिए पेश करने से दुरेक ना करें। आमीन।
دوست ادب کا لمبردار پروگرام ادب خزانہ لے کر حاضر خدمت ہیں یونس سنی اور عامر سہیل، ہماری جانب سے ہمارا بہت ہی عقیدت بھرا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہماری دعائیں، نیک تمنائیں اور نیک جذبات قبول کیجیے، اور امید ہے کہ آپ سب خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔
سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سے جس کا عنوان ہے دل شکستہ۔ اور اس کہانی کے بارے میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ انسان کا اصل روپ اسی وقت عیاں ہوتا ہے جب عملی زندگی میں اس سے واسطہ پڑے۔
سامعین، ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خوبصورت کہانی کی خالق جو ہیں وہ ہیں ثروت نذیر۔ تو سماعت فرمائیے یہ کہانی۔ جینو کا وجود ہر وقت چھلکنے کو تیار رہتا، عقیدت اور احترام کی ہنڈیا پورے زور و شور کے ساتھ اس کے اندر اتھل پتھل مچاتی رہتی۔ دودھ کو چولہے پر چڑھاؤ کچھ ہی دیر میں ابل کر دیگچی کے کناروں کو توڑتا ہوا سارے چولہے پر بکھر جاتا ہے، بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔
وہ سارا دن اپنے اندر جلتے چولہے کو بجھاتی رہتی، کہیں عقیدت کا بھرا برتن کنارے توڑ کر باہر نہ جا گرے۔ وہ جلدی سے اپنے آپ کو بجھاتی اور کسی کام میں مصروف کر لیتی۔
کبھی بڑی بیگم کے کمرے میں جا کر ان کی ٹانگیں دباتی۔ دبیز قالین سے سجا کمرہ، بیش قیمت فرنیچر، ویلوٹ کے پردے، سنگار میز پر انواع اقسام کے میک اپ کا سامان اور تیز خوشبویات، اتنی دلفریب چیزوں کے بیچ میں بیزار بڑی بیگم ہر وقت شکوا کنا کا جو بادام اخروٹ کی تشتری سے میوہ جات منہ میں ڈالتے ہوئے حاجی صاحب کی ناقدری پر کھولتی رہتی۔
عورت کچھ بھی کرے، اولاد، جوانی، دولت سب نچاور بھی کر دے، مگر مرد کا دل اپنی مٹھی میں نہیں کر سکتی۔ ہائے بیچاری بے فیض عورت! 13 سالہ جینو پھر حیرانی سے اس فربا گوشت کے پہاڑ جیسی عورت کو دیکھتی، اور یہ بیچاری کہاں سے ہے؟ بیچاری تو اس کی سوکھی سڑی بد شکل ماں تھی جو بان کی چارپائی پر کھانستی رہتی۔
کھانے پینے کی بڑی فراوانی تھی، کھلا پکتا، روز گوشت، مرغ اور چاول کی خوشبو اشتہا بڑھا دیتی۔ وہ پھر پیٹ بھر کر کھاتی۔ بڑی بیگم نے اسے شیشے کا گلاس اور چینی کی پلیٹ دی تھی، خوبصورت نقش و نگار والی۔ جینو اپنے کھانے والے برتن کو دیکھ کر مسرور ہو گئی۔ جینو نے پہلے جہاں کام کیا تھا انہوں نے اس کی حیثیت کے مطابق ٹرے میں گھٹیا برتن دیے تھے، مگر یہاں کھانا عمدہ تھا اور برتن بھی بہترین۔ وہ بڑی محبت سے اپنے برتن دھوتی، باقی برتنوں کو بڑی ماسی دھوتی تھی، کھانا بھی وہی پکاتی۔ جینو کا کام صفائی کرنا تھا، غسل خانے، باہر کا صحن، گراج اور کپڑے دھونے بھی ایک کام والی آتی تھی۔ کبھی وہ بڑی بیگم کی تینوں بیٹیوں کے کمرے میں چلی جاتی، بڑی پیاری اور اچھی باجیاں تھیں۔ وہ اسے کمپیوٹر پر گانے سناتی اور خوب میک اپ کراتی۔ تینوں کے پاس اپنے موبائل فون تھے، وہ اکثر فون پر باتیں کرتی رہتی۔ بڑی باجی نے اسے اپنی بہت سی نیل پالشز دے رکھی تھی، درمیان والی نے اسے اپنے انگلش رسالے دیے تھے جن میں بڑی بڑی تصاویر تھی، چھوٹی والی تو اسے ہر وقت اپنے کمپیوٹر پر گانے سناتی رہتی۔ مگر تھیں سب بہت اچھی اور نیک بیبیاں، باہر نکلتی تو کالے لمبے برقوں میں، بڑی بڑی مونچھوں والا ڈرائیور انہیں کالج چھوڑنے جاتا۔
اوپر والے حصے میں چھوٹی بیگم اور ان کا اکلوتا بیٹا رہتے تھے۔ چھوٹی بیگم بڑی حسین اور نوجوان تھی۔ اوپر والے حصے میں ٹی وی اور کیبل بھی تھا۔ وہ اکثر چھوٹی بیگم کے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھتی۔ حاجی صاحب بھی عموماً اوپر ہی ہوتے چھوٹی بیگم کے ارد گرد۔ اس گھر میں اصل عقیدت اور احترام کا منبع حاجی صاحب کی ذات ہی تھی۔ اونچے، لمبے اور فربا حاجی صاحب سفید شلوار قمیض، گرے واسکٹ اور ڈبوں والے رومال کندھے پر ڈالے بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے۔
میری جان، روٹھا نہ کرو، وہ بڑے پیار سے روٹھی چھوٹی بیگم سے کہتے۔ 13 سالہ جینو کارٹونوں سے نظر اٹھا کر یوں ہی دیکھتی اور سوچتی کہ بھلا حاجی صاحب سے کیوں چھوٹی بیگم ناراض ہیں؟ ان سے بھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے، وہ تو اتنے بلند، اتنے فیاض اور عظیم انسان ہیں۔ بیٹھک میں ہر وقت ان کے نیاز مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی ان کے در سے خالی نہ لوٹتا، حتیٰ کہ جینو کا باپ اکرم بھی نہیں، जीनू को काम पर रखकर एहसान ही तो किया था हाजी साहब ने।
हाजी साहब बड़े मशहूर इंसान थे, अक्सर अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती। मर्दाना बैठक में जो टीवी था, इसके किसी न किसी चैनल पर भी वो लोगों के दरमियान खड़े तकरीर करते नजर आते। उनकी बड़ी भारी गरजदार आवाज उनके वजूद से लगा खाती। जब वो निचले हिस्से में बोलते तो जीनू का नन्ना सा दिल धड़ धड़ करने लगता। खौफ के मारे उसकी सांवली पेशानी अरकालूद हो जाती। मगर कुछ ही अरसे में वो जान गई कि वो बोलते ही ऐसे हैं, ऊंचा ऊंचा और दबंग।
लड़की का ख्याल रखा कर, खाने पीने कपड़े लत्ते में तंग दिली न करना। हाजी साहब पोछा लगाती, जीनू पर नजर डालते और बड़ी बेगम को हुक्म देते। जीनू का दिल अकीदत के चूल्हे पर चढ़ जाता। हाजी साहब उसे ऐसे लगने लगते जैसे बुलंदोबाला आबशार में नेकी पाकीजगी और मोहब्बत का बहता ठाठे मारता शिफाफ पानी।
ये लोग घर के भेदी होते हैं, इनकी जबानों से निकले अल्फाज दूसरों के लिए ज्यादा मोतबर होते हैं। जाहिल औरत वो बड़ी बेगम की बेजार शक्ल देखकर होले से बोलते, मुलाजिमों का ख्याल रखा करो, वो हुक्म देकर अपनी बैठक में चले जाते। छोटी बेगम जरा कड़वी और मिजाज की तेज थी, मगर हाजी साहब अपनी बेहद रोब वाली शख्सियत के बावजूद बहुत ही मेहरबान थे। और जीनू ने ऐसे ही नहीं हाजी साहब की अकीदत अपने दिल में पाल रखी थी, जो बार बार छलकने लगती थी।
उनका कहना था कि जो खाओ अपने मुलाजमों को भी वही खिलाओ, जैसा पहनो वैसा उनको पहनाओ, और हम सबके लिए यही अच्छा है कि ऐसा करें। जीनू के हाथ में शरबत के गिलासों की दश्त लरस गई, अकीदत के मारे आंखों में आंसू भर आए। हाजी साहब अपने फरमान की सच्ची तस्वीर थे। वो यूं ही तो उस घर में इतनी खुश न थी। इस घर में आकर उसे इंसानियत का वो रूप देखने को मिला जो उसकी 13 साल जिंदगी में ना पैद था। वो अब इस घर की मुलाजमा थी, जहाँ आका और गुलाम की शनाख्त अलग अलग थी मगर मुकाम एक ही था। वो तितली की तरह इतराती और गुनगुनाती फिरती, फिरकी की तरह सारे घर में घर का काम सर अंजाम देती, मगर ना थकती, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ अच्छा खाने को मिल रहा था बल्कि उसके मुतालिक अच्छा सोचा भी जाता था।
और ये हाजी साहब ही थे जिन्होंने उसको ये रुतबा फखर और मान दिया था। वो फिर उनसे क्यों ना अकीदत पालती। अकीदत एहतराम की हंडिया लबरेज होती रहती। आज घर में बहुत बड़ी दावत थी, घर भर में तैयारी का समा था। जीनू के काम बहुत बढ़ गए, मगर अब वो काम से जी नहीं चुराती थी। दावत के खात्मे पर वो ट्रे में मेहमान खाने से सारे गिलास उठा लई और मासी रसूला को दिए। काम ज्यादा हो जाता तो मासी रसूला कभी कभार उससे ऐसे काम भी करवा लेती थी।
सामिन, इस कहानी का बकिया हिस्सा हम आपकी समातों की नजर करेंगे, मगर प्रोग्राम में भी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत चाहिएगा, हम अभी हाजिर हुए।
तुलसी रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब का ताना।
समय आज के प्रोग्राम में हम आपकी समातों की नजर कर रहे हैं एक खूबसूरत कहानी जिसका उन्वान है दिल शिकस्ता, और ये तहरीर की है सरवत नसीर ने। अब समात फरमाइए इस कहानी का बकिया हिस्सा। जीनू ने ट्रे में सारे गिलास इकट्ठे करके माई रसूला को दे दिए। काम ज्यादा हो जाता तो मासी रसूला कभी कभार उससे ऐसे काम करवा लेती थी। सारे धुले हुए बर्तन उसने बावर्ची खाने की अलमारी में लगा दिए। हाजी साहब के जेरे इस्तेमाल बर्तन बड़े खुशनुमा और दिल फरेब थे। वो सुनहरी हाशिए वाला गिलास थाम कर अकीदत से देखती रही। जीनू को यूं लगा कि ये गिलास नहीं आबे हयात का जाम है, अगर उसने गिलास में पानी डालकर पी लिया तो वो अमर हो जाएगी। उसकी जात से वाबस्ता तमाम जिल्लत इस गिलास के पानी से धुलकर उसे पाकीजा और मुकद्दस बना देगी।
उसके दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार इस गिलास में पानी डालकर पी ले, या वो ये गिलास अपनी ओढ़नी में छुपाकर ले जाए और अपनी बीमार माँ को इसमें पानी पिलाए। एक बार एक अकीदतमंद अपना बीमार बच्चा हाजी साहब के पास दम करवाने लाया था। हाजी साहब ने अपने गिलास में अपना जूठा पानी बच्चे को पीने के लिए दिया था। कुछ दिन बाद हाजी साहब ने बड़ी बेगम को बताया कि सूफी नवाज का बच्चा उनके दम किए हुए पानी से तंदुरुस्त हो गया है। तुम न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हो कि मेरे दम से तुम्हारा दम निकला जाता है।
बड़ी बेगम तो थी ही बेजार और शिकायतों की मारी हुई, जिन्होंने गिलास थामे बड़ी बेगम को सर झटक कर अपने दिमाग से निकाला। मासी रसूला दीक्षे उठाकर पिछले सहन में चली गई थी, जिन्होंने एहतराम से वो गिलास उठाया और उसमें पानी भरा। हाजी साहब का जूठा पानी नहीं तो क्या हुआ, ये गिलास तो उनका है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं उनके गिलास में पानी पी लूं। वो कुछ देर गिलास से पानी भरकर हाथ में थामे खड़ी रही, फिर आंखें बंद की और गिलास को अपने लबों से लगा लिया। अकीदत से भरा बर्तन शू शू करने लगा। अचानक गिलास को धचका लगा और उसके हाथों से छूटकर संगे मरमर के फर्श पर रेजा रेजा हो गया।
बेहया छोकरी, तेरी ये हिम्मत, तेरे बाप पर तरस खाकर तुझे मैंने यहाँ झाड़ू टाकी के काम पर रखा और तू अपने मालिक की बराबरी करने चली थी, मालिक के बर्तनों को अपने नापाक हाथों और गलीज मुंह से पलीद कर रही थी। हाजी साहब की जुबान आग उगल रही थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में आज जीनू को खून उतरा हुआ महसूस हुआ। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से।
जीनू ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, उसके पैरों के नीचे गिलास की किरचियां थीं, मगर हसास जीनू को उनकी चुभन महसूस न हो सकी। उसके दिल में अकीदत व एहतराम की हंडिया गिलास से ज्यादा धमाके के साथ टूटी थी। उस धमाके ने जीनू का पूरा वजूद रेजा रेजा कर दिया था, फिर भला पैरों के नीचे आने वाले कांच की किरचियां क्या अहमियत रखती थीं? सच है सामईन कि इंसान का असल रूप उसी वक्त तैयार होता है जब अमली जिंदगी में उससे वास्ता पड़ता है। बाज़ दफा कुछ लोगों के हवाले से हमारे जहन में कुछ ऐसे तसव्वुरात होते हैं जो उनसे मिलने के बाद रेसा रेसा हो जाते हैं।
दोस्तों ये अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं अहमद सगीर सदीकी की दो गजलें और ये बहुत ही खूबसूरत गजलियात है, उम्मीद है आप इन्हें पसंद फरमाएंगे। दरो दीवार के अरमान में रहना नहीं था, दरो दीवार के अरमान में रहना नहीं था, कहानी को फकत उनवान में रहना नहीं था।
वाह वाह।
इधर पेचाक जुल्फ यार की ख्वाहिश थी कुछ और, उधर दिल को किसी खलजान में रहना नहीं था, और किसी सूरत नहीं था सर झुका देने पे तैयार, किसी सूरत नहीं था सर झुका देने पे तैयार, शजर को देर तक तूफान में रहना नहीं था। नमूदे खाक थे और खाक उड़ाने में लगे थे, नमूदे खाक थे और खाक उड़ाने में लगे थे, हमें फिक्रो सरो सामान में रहना नहीं था। सो हम भी इश्क में एक रोज जिस्मो जहां से गुजरे, सो हम भी इश्क में एक रोज जिस्मो जहां से गुजरे, कि इस शोले को आतिशदान में रहना नहीं था। दरो दीवार के अरमान में रहना नहीं था, कहानी को फकत उनवान में रहना नहीं था।
सामईन अहमद सगीर सदीकी की खूबसूरत गजल आपने समाअत फरमाई। चलिए एक और गजल आपकी समाअतों की नजर करते हैं और ये भी अहमद सगीर सदीकी के कलम का ही शाहकार है, समाअत फरमाइए। ये भी क्या कम है अभी तक वो मुझे पूछता है, ये भी क्या कम है अभी तक वो मुझे पूछता है, ये है वो दौर यहाँ कौन किसे पूछता है।
वाह वाह, क्या सच्ची बात की।
कोई गम है मेरी खुशियों पे नजर है जिसकी, कोई गम है मेरी खुशियों पे नजर है जिसकी, कोई दरिया मेरे शहरों के पते पूछता है।
वाह वाह।
और दिले आवारा में खुबाने दिल आसार का दर्द, दिले आवारा में खुबाने दिले आजार का दर्द, जब भी उठता है कई नाम नए पूछता है।
वाह वाह वाह।
बस उड़ाए लिए जाता है ये सौदाए खराम, बस उड़ाए लिए जाता है ये सौदाए खराम, ये किसी से कहीं रुकने के लिए पूछता है।
वाह।
और अपने हर खत में वो रखता है कोई मुजदाए वस्ल,
वाह,
अपने हर खत में वो रखता है कोई मुजदाए वस्ल, और फिर हमसे जुदाई के मजे पूछता है।
वाह वाह।
ये भी क्या कम है अभी तक वो मुझे पूछता है, ये है वो दौर, यहाँ कौन किसे पूछता है।
भाई वाह क्या बात है, कोई गम है मेरी खुशियों पे नजर है जिसकी, कोई दरिया मेरे शहरों के पते पूछता है। दोस्त आपने अहमद सगीर सदीकी की दो गजलियात सुनी, अब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं सदीक सूरज की लिखी हुई दो गजलियात। उम्मीद है ये भी आपकी समातों की जो कसौटी है उस पर पूरा उतरेंगी। लिखते हैं, मुफलिस के घर में लाल हूँ मुझको खरीद ले।
वाह,
मुफलिस के घर में लाल हूँ मुझको खरीद ले, मैं भी बिकाऊ माल हूँ मुझको खरीद ले।
बहुत आला।
मुफलिस के घर में लाल हूँ मुझको खरीद ले, मैं भी बिकाऊ माल हूँ मुझको खरीद ले। दिल के खंडर को ताज महल सा बनाऊंगा, दिल के खंडर को ताज महल सा बनाऊंगा, ममारे बाह कमाल हूँ मुझको खरीद ले।
बहुत आला।
मुंह फेर दूं मैं तेग का खंजर का तीर का, मुंह फेर दूं मैं तेग का खंजर का तीर का, एक आजमूदा ढाल हूँ मुझको खरीद ले। ठंडी हवा की काट से तुझको बचाऊंगा, ठंडी हवा की काट से तुझको बचाऊंगा, मैं एक गर्म शाल हूँ मुझको खरीद ले।
बहुत आला।
जज्बों की जल तरंग हूँ ढोलक की थाप हूँ, जज्बों की जल तरंग हूँ ढोलक की थाप हूँ, मैं रक्स हूँ धमाल हूँ मुझको खरीद ले। नफरत करूँ के प्यार करूँ इंतहा करूँ, नफरत करूँ के प्यार करूँ इंतहा करूँ, मेयार में मिसाल हूँ मुझको खरीद ले।
बहुत आला।
बेदाग रुख पे मैं नजर बद का तोड़ हूँ, बेदाग रुख पे मैं नजर बद का तोड़ हूँ, मैं एक स्याह खाल हूँ मुझको खरीद ले। और सूरज अंधेरी शब का सवेरा समझ मुझे, सूरज अंधेरी शब का सवेरा समझ मुझे, मैं एक नेक फाल हूँ मुझको खरीद ले। मुफलिस के घर में लाल हूँ मुझको खरीद ले, मैं भी बिकाऊ माल हूँ मुझको खरीद ले।
और सामिन इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
दोस्त की रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना।
सामिन वक्फे से पहले आपने सदीक सूरज की खूबसूरत गजल समाअत फरमाई, उनकी एक और खूबसूरत गजल आपकी समातों की नजर करते हैं। नहीं ऐसा कि जज्बे वलवले दफना दिए हैं,
वाह वाह,
नहीं ऐसा कि जज्बे वलवले दफना दिए हैं, मसीहा के दरे अकदस पे बस रुकवा दिए हैं।
वाह वाह क्या बात है,
बस अब एक कहकशां लाकर बिछानी रह गई है।
वाह वाह,
वगरना राह से पत्थर तो सब हटवा दिए हैं।
वाह,
मैं पैगामात की तरसील में अब सुर्ख रूह हूँ।
वाह,
पहुँचना था जहाँ उनको वहाँ पहुँचा दिए हैं।
वाह फिर से कहिए,
मैं पैगामात की तरसील में अब सुर्ख रूह हूँ, पहुँचना था जहाँ उनको वहाँ पहुँचा दिए हैं।
वाह वाह,
हमारे चीखने चिल्लाने पर पहुँचा ना कोई, पर इतना है कि हमने दिल कई धड़का दिए हैं।
क्या बात, बहुत अच्छे।
और टपकती है जो रुख से इस कदर आसूदगी सी, ये क्यों पेचो खम हस्ती सभी सुलझा दिए हैं, और मोहब्बत में सभी कुछ हार कर बैठे हो सूरज।
वाह जी वाह,
मोहब्बत में सभी कुछ हार कर बैठे हो सूरज, तो क्या इस खेल में मोहरे सभी पिटवा दिए हैं।
क्या बात,
नहीं ऐसा कि जज्बे वलवले दफना दिए हैं, मसीहा के दरे अकदस पे बस रखवा दिए हैं।
बस अभी कहकशां लाकर बिछानी रह गई है, वगरना राह से पत्थर तो सब हटवा दिए हैं। दोस्त आपने सदीक सूरज की शायरी में से ये इंतखाब सुना, अब आपकी समातों की नजर करते हैं अजीम हैदर सैयद की एक बहुत ही खूबसूरत गजल जो कि कुछ इस तरह है। हम ये किस आलम में उम्रे रायगां तक आ गए,
क्या बात है,
हम ये किस आलम में उम्रे रायगां तक आ गए, लोग बिकने के लिए खुद ही दुकान तक आ गए।
वाह वाह वाह, बहुत आला।
ऐसी तेज आंधी में लोगों की बुरी हालत हुई, ऐसी तेज आंधी में लोगों की बुरी हालत हुई, शुक्र कर पंछी पलट कर आशियां तक आ गए।
आशियां तक आ गए, बहुत आला।
दूर तक मंजिल है कोई और ना मंजिल का निशान, दूर तक मंजिल है कोई और ना मंजिल का निशान, तुम जहां तक कह गए थे हम वहां तक आ गए।
वाह,
वो जो दरिया था वो सहरा हो गया है और हम, वो जो दरिया था वो सहरा हो गया है और हम प्यास के मारे यूं ही रेगे रवां तक आ गए।
वाह वाह वाह, क्या बात है।
और उसने एक दिन यूं ही मुझसे हाल पूछा था मेरा,
वाह बहुत।
उसने एक दिन यूं ही मुझसे हाल पूछा था मेरा, दिल के अंदर जितने छाले थे सुबह तक आ गए।
वाह वाह,
हम ये किस आलम में उम्रे राय गां तक आ गए, लोग बिकने के लिए खुद ही दुकान पर आ गए।
और अजीम हैदर सैयद की एक और गजल सामईन आपकी समातों की नजर करते हैं। न जाने कौन सा लम्हा हवस में आ गया है, न जाने कौन सा लम्हा हवस में आ गया है, कि आप चल के कोई दस्तरस में आ गया है।
क्या बात है।
बजाय अश्क लहू बह रहा है आंखों से, बजाय अश्क लहू बह रहा है आंखों से, ये कैसा दर्द मेरे दिल की नस में आ गया है।
बहुत हो, बहुत हो।
और फना पजीर हुई है जो डूबती हुई शाम, फना पजीर हुई है जो डूबती हुई शाम, अजीब सोज सदाए जर्स में आ गया है।
क्या बात है।
यहाँ से जाते हुए बैन कर रही है हवा, यहाँ से जाते हुए बैन कर रही है हवा, न जाने कौन सा परिंदा कफस में आ गया है, और जरा सी देर ही आंधी चली थी गुलशन में, जरा सी देर ही आंधी चली थी गुलशन में, तमाम शहर किसी खारो खस में आ गया है, न जाने कौन सा लम्हा हवस में आ गया है, कि आप चल के कोई दस्तरस में आ गया है।
बजाय अश्क लहू बह रहा है आंखों से, बजाय अश्क लहू बह रहा है आंखों से, ये कैसा दर्द मेरे दिल की नस में आ गया है। जी दोस्त, आपने अजीम हैदर सैयद की शायरी में से ये इंतखाब सुना। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम आपकी राय के मुंतजर रहेंगे। और अब इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान यूनुस सनी और आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए।
Radio America, Asia.